मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 13 सितंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी के आगामी दो बैचेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, दाखिला लिया है। इसमें तीन मित्र वे हैं जो अभी अक्टूबर और नवंबर के बैच में आ रहे हैं और एक दोस्त ने रजिस्ट्रेशन कराया है मार्च 2019 के बैच के लिए। तो जो अक्टूबर नवंबर बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया है उन मित्रों के नाम हैं रजत कुमार, आपका गांव है दड़िया जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से, सुमित ठाकुर आप नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं और आदित्य कटियार आपका गांव है सिकंदरा जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से। तो रजत, सुमित और आदित्य आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इसी के साथ ही अपनी पूरी टीम की ओर से मैं स्वागत करता हूं कुमार कार्तिकेय का जो रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और जो 3 मार्च से 17 मार्च के बैच में आ रहे हैं। तो कार्तिकेय आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं ले रहा हूं, जानबूझकर मैं ऐसा कर रहा हूं। टॉपिक तो वैसे आज भी है लेकिन मुझे एक दूसरा टॉपिक ही कह लीजिए या दूसरी घटना एक ऐसी मिल गई है जिसके बहाने मैं आज आप सबसे इस इश्यू पर बात करूंगा कि भूगोल की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, यानी कि भूगोल की तैयारी आप कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरे जो खबरें हैं उन पर बात कर लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर और मेरी समझ से आप सब बड़े आराम से उस खबर का अनुमान भी लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए जरा सा अनुमान लगाने की कि कल आपने न्यूज सुनी होगी, डीडी न्यूज देखी भी होगी कि किस खबर को आप सबसे इंपॉर्टेंट खबर मान सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। और मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि अगर आप पिछले लगभग 6 महीने से भी डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप जो अनुमान लगाएंगे वह बिल्कुल सही होगा। हाँ, यदि उससे कम समय अभी सुनते हुए हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आप अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे तो उससे परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ये तो कैपेसिटी है जो धीरे 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 विकसित होती है। पेड़ की तरह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए पेड़ अपने समय से ही बढ़ेगा, ऋतु आए फल होए, हमारे हड़बड़ी से कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, कल की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है प्रधानमंत्री आशा योजना, इसे मैं आशा नाम दे रहा हूं और है उसका आशा नाम दिया भी गया है, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम। अन्नदाता का मतलब है किसान। देखिए, नाम नया दे दिया गया है कि किसान हमें अन्न देता है, वास्तव में अगर किसान ही नहीं होंगे तो क्या होगा। इसे पूरा नाम उस तरह से कहा गया पीएम आशा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां आशा से किसका मतलब है। अन्नदाता किसान, उनकी जो आय होनी है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, संरक्षण अभियान, उनको संरक्षित करने का कि उनकी जो इनकम है वो थोड़ी सी संरक्षित रहे, उस तरह की एक योजना। अब इसका संबंध देखिए, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातों को ध्यान में रखना प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात, इसका संबंध केवल किसान जो पैदा करेगा उनको अपने उत्पादन का एक लाभकारी मूल्य मिल सके इससे है कि उनको सही सही कीमत मिल सके। अब सही कीमत क्या है? सही कीमत वो है जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, ठीक है, उतना तो उनको मिले ही। बाजार में स्थिति क्या है? उतना उनको नहीं मिल पाता। जैसे अगर अभी आप बाजार में जाइए तो जो उड़द की दाल है, जो एमएसपी है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उससे लगभग 40% कम में बाजार में बिक रहा है। बाजरे की भी लगभग यही स्थिति है, तो इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। तो इसका उत्पादों को का लाभकारी मूल्य प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो योजना है ये गेहूं और चावल पर नहीं है, ये योजना गेहूं और चावल पर नहीं है, इसका मूल जो संबंध है वो खासकर तिलहन पर है। तो ये दो तीन पॉइंट हैं और इसके लिए तीन तरह के विकल्प दिए गए हैं राज्यों को। पहला तो ये है कि वो समर्थन मूल्य पर चीजें खुद राज्य सरकार खरीदे। दूसरा है मध्य प्रदेश की एक भावांतर योजना है, ये बड़ी पॉपुलर योजना भावांतर। देखिए भावांतर का क्या मतलब है, मुझे मालूम है जब ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी तो मैंने इसकी चर्चा की थी अपने डेली ऑडियो में। भाव का अंतर, भाव का अंतर, भाव यानी कि कीमत, कीमत का कैसा अंतर, एक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है और दूसरा बाजार में वास्तव में किसानों को बेचना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1100 रुपए, सरकार ने फिक्स किया है, बाजार में किसानों को मिल रहा है 1000 रुपए, तो अंतर कितना होगा 1100 और 1000 में 100 रुपए का। तो ये जो भावांतर हुआ, जो 100 रुपए का अंतर हुआ, इसकी भरपाई सरकार कर देगी, ये है भावांतर योजना। और तीसरा ये है कि अगर भाव कम हो रहे हैं तो उसमें फिर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे खरीदारी करवा करके और उसका स्टॉक बनाया जाए। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ये एक खबर है। जो दूसरी खबर है मित्रों, आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 15 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा है, ये अभियान शुरू किया जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जनरल स्टडीज की दृष्टि से तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, स्वच्छता अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्वच्छता ही सेवा यह निबंध का एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है। और कोई ताज्जुब नहीं कि आपके जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर है एथिक्स, अब आप देखिए कि सर्विस, सर्विस तो एथिक्स का हिस्सा है, आपके फोर्थ पेपर का हिस्सा है, लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि स्वच्छता भी एक प्रकार की सर्विस ही है, सेवा करना ही है। तो अब आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि स्वच्छता के जरिए कैसे सेवा की जा सकती है, इस पर सोचिए, आपको पॉइंट मिलेंगे। तुरंत हड़बड़ी के साथ सोचेंगे तो हो सकता है कि कुछ न सूझे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, सोचने की कोशिश कीजिए, पक्का है कि आप कुछ ना कुछ कुछ पॉइंट्स ढूंढ लेंगे। दोस्तों मैं थोड़ी सी दो तीन बातें आपसे करना चाहूंगा अखबारों की क्लिपिंग्स के ऊपर, फिर मैं मुख्य विषय पर आऊंगा। एक मैं आपको दैनिक भास्कर के आज का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें रघुराम राजन जी का एक बयान आया था, जो हमारे रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, और उन्होंने ये बताया था कि आज जो हम एनपीए की बात करते हैं कि बैंकों का बहुत सारा जो पैसा है वो डूबत खाते में जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली 2006 से 2008 के बीच में जो सरकार थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी उनकी देन है। लेकिन केवल यही बात नहीं, उन्होंने परिस्थितियों की बात कही है। तो आप जब ये एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे तो आपको वो तीन बातों का उल्लेख मिलेगा जो रघुराम राजन ने कही है, जिसकी वजह से एनपीए आज इस स्थिति में पहुंचा है। एक उन्होंने कहा है अति आशावादी बैंकर, दूसरा उन्होंने कहा नीतिगत सुस्ती, और तीसरा कहा बड़ा कर्ज देने में बरती गई असावधानी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अति आशावादी बैंकर, नीतिगत सुस्ती और बड़ा कर्ज देने में बरती गई सावधानी, इन तीन कारणों से इतना बड़ा एनपीए का पहाड़ खड़ा हो गया है। तो ये जो तीन पॉइंट हैं इनको आप अपनी तरफ से समझने की कोशिश कीजिए। एक मैं आपको, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो डोर स्टेप पर सर्विस देने की बात कही है जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, उसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छा एडिटोरियल कमेंट आया है, इंग्लिश में है लेकिन सरल है, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें इन्होंने एक बात कही है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने भी कुछ इसी तरह की सिंगल विंडो सर्विस सेंटर की घोषणा की थी। तो इसमें आपको दो तीन पॉइंट अच्छे से मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार फिर पहली थी जो इसने इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार एक्ट लेकर के आई, इसमें आपको कुछ अच्छे फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि सर्विस डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त करना आज भारत के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग कल इस पर बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स एक मैं बहुत अच्छा आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, श्याम सरन जी का है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड का है, कि हम किस तरीके से जो भविष्य के जो खतरे हमारे सामने मंडरा रहे हैं और खासकर पर्यावरण को लेकर के उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसे जरूर पढ़िएगा और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट भी कर लीजिएगा। देखिए अगर आप पॉइंट्स उस तरीके से नोट नहीं करेंगे तो ये मान करके चलिए कि फिर आपकी जो तैयारी है वो आधी अधूरी है। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने में और तैयारी करने में तो दोस्तों फर्क होता है। इस फर्क को तो आपको समझना ही होगा अगर आप सिविल सर्विस वास्तव में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, अदरवाइज फिर आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। भूगोल की तैयारी कैसे करें? देखिए, भूगोल की तैयारी एक बार आप किताब से कर लेते हैं, किताब से आपको भूगोल के सिद्धांतों की जानकारी मिल जाती है। प्री में भी कुछ क्वेश्चंस आप भूगोल के अटेम्प्ट कर लेंगे उसके आधार पर, और नो डाउट कि मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस उसके आधार पर अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत थोड़े से क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चंस भले ही वो भूगोल के ही क्यों ना हो, लेकिन वो डिपेंड करते हैं करेंट अफेयर्स पर। जैसे कि याद कीजिए, कल या परसों भी मैंने केरल में आई बाढ़ के बारे में आपसे चर्चा की थी कि उसके बकायदे आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि जो केरल में बाढ़ आई है वो चलिए प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन उसमें मनुष्य निर्मित कार्यों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, राइट। अब मैं आज आपको दूसरा टॉपिक बता रहा हूं। ये है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमेरिका में एक तूफान आ रहा है जिसका नाम है हरिकेन फ्लोरेंस। तो एक तो ये नाम मालूम आपको होना चाहिए, फिर आप इसको पढ़िए, अखबार में पढ़िए और देखिए, ध्यान से पढ़िए। अब यहां मैं तैयारी पर आ रहा हूं। अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आप सच में इसको समझना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर तो बात ही अलग है, पढ़ करके छोड़ दीजिए, आपके दिमाग में भी वो चीज नहीं रहेगी, बात खत्म हो गई, आपको एक झूठा आत्मसंतोष मिल जाएगा कि यार मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि जब आप पढ़ेंगे तो मैं जिस जहां से पढ़ रहा हूं मैं उसकी भाषा पढ़ करके सुनाता हूं। सबसे पहले तो आप अमेरिका का नक्शा खोलेंगे, एटलस में आपको मिल जाएगा, राइट। अब पहला वाक्य है, अमेरिका में बड़े तूफान की आहट है, हरिकेन फ्लोरेंस। तो रुकिए और याद कर लीजिए कि अच्छा, हरिकेन फ्लोरेंस। इसके बाद फिर आगे की लाइन है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और तरफ ध्यान अगर भटक रहा हो तो थोड़ा सा रुकिए, कंसंट्रेट कीजिए। पश्चिम अटलांटिक महासागर में पैदा हुआ चक्रवात, यानी कि यह जो चक्रवात है यह पश्चिम अटलांटिक महासागर में पैदा हुआ है। तो अब आप बकायदे नक्शे में अटलांटिक महासागर ढूंढिए और उसमें पश्चिम अटलांटिक महासागर को देखिए, यानी कि अटलांटिक महासागर आप पाएंगे कि अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप के बीच में है। यह है अटलांटिक, इसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक, और जो लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है उसको हम कहते हैं साउथ अटलांटिक, राइट। तो पश्चिम अटलांटिक महासागर में पैदा हुआ, मैंने क्या कहा कि अमेरिका और यूरोप, तो यूरोप का जो साइड है वो अटलांटिक महासागर का कौन सा साइड हुआ? ईस्ट। और ये क्या कह रहा है? पश्चिम अटलांटिक, तो अमेरिका के नजदीक हो गया। देखिए, यूरोप में खतरा नहीं है, अमेरिका में खतरा है, क्योंकि ये पश्चिम अटलांटिक महासागर में पैदा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जब वो पश्चिम अटलांटिक महासागर में, अब उसके कहीं भी पैदा हो रहा होगा, अब वो रफ्तार से चल रहा है, 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और किधर चल रहा है? टूवर्ड्स ईस्ट। अब वो धीरे धीरे चलते 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 अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचेगा। यहां कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अटलांटिक महासागर का तो पश्चिम है तो अमेरिका का पूर्वी कैसे हो गया, आप नक्शे में देखेंगे कि तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अमेरिका का पूर्वी ही भाग होगा ना, क्योंकि वो अटलांटिक महासागर का पश्चिम भाग है और अटलांटिक महासागर यूरोप और अमेरिका के बीच में फैला हुआ है। नक्शे में देखिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, मेरे ऐसे सुनने से समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार समझ गए, लेकिन इनफैक्ट आप समझे नहीं है। अगर समझे भी हैं कुछ समय में भूल जाएंगे, प्लीज कंसल्ट द मैप में कंसल्ट कीजिए। फिर इसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि हिस्से की तरफ बढ़ रहा है, दो दिन में हरिकेन अमेरिका के तट से टकरा सकता है, वर्जीनिया और कैरोलिना पर बड़ा खतरा है, वहां आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अब आप ढूंढ लीजिए उसमें कैरोलिना और वर्जीनिया, आपको ईस्ट कोस्ट पर दिखाई दे जाएंगे, जैसे हमारे यहां ईस्ट कोस्ट पर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम वगैरह है, ठीक इसी तरह से ईस्ट पर आपको वर्जीनिया और कैरोलिना स्थित दिखाई देंगे। कल और परसों के अखबार में आपने देखा होगा कि वाशिंगटन में भी लोगों को सतर्क कर दिया गया है, अमेरिका की राजधानी डीसी वाशिंगटन। अब आप आगे चले जाइए तो देखिए कि वर्जीनिया की बिल्कुल सटा हुआ वाशिंगटन है, वो भी समुद्र के किनारे है, लेकिन न्यूयॉर्क में अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप न्यूयॉर्क ढूंढ लीजिए, वो भी है पूर्व में ही, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ होने की वजह से तूफान वहां तक नहीं घुसेगा, क्योंकि देखिए जब लैंड एरिया में तूफान एंटर कर जाता है तो उसको तो रोकने वाली, हवा की गति को रोकने के लिए बिल्डिंग है और क्या कहते हैं पेड़ हैं, चट्टाने हैं, ये सब चीजें हैं, तो घर्षण के कारण हवा की स्पीड रुक जाती है। लेकिन जो तट पर है उनको तो सीधे मार करती है एकदम, क्योंकि वो तो समुद्र के ऊपर से चल के आ रही है और समुद्र पर उसको रोकने वाला कोई है नहीं। तो दोस्तों ये है भूगोल की तैयारी करने का तरीका। जब तक आप इस तरीके से भूगोल की तैयारी नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, दूसरों की बात मैं नहीं जानता मित्रों, क्योंकि तैयारी करने का सबका अपना अपना ढंग होता है, तैयारी करने के बारे में बताने का भी सबका अपना अपना ढंग होता है। मेरा ये ढंग है और मुझे लगता है कि यह एक जो अच्छे ढंग है उनमें से एक अच्छा ढंग हो सकता है। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले सभी आप नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अंबिका यादव, शुभम साहू कानपुर से, महिमा शुक्ला, गौरव मेघवाल, राहुल सिंह वाराणसी से और ज्योति गुप्ता रुद्रपुर उत्तराखंड से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।